ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सोऽहं विकथमानस्य सोऽहं विकथमानस्य शिरः कायाधरामि ते गोपायेत हरिस्त्वाद्य यस्ते शरणं वीप्सितम्। सोऽहं विकथमानस्य शिरकायाधरामि ते गोपायेत हरिस्त्वाद्य यस्ते शरणं वीप्सितम्। सोऽहं विकथमानस्य शिरकायाधरामि ते गोपायेत हरिस्त्वाद्य यस्ते शरणं वीप्सितम्। द्वारा शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सह वह अहम मैं विकथ मानस्य ऐसे अनर्गल प्रलाप करने वालों का सिर कायात शरीर से हरामी छिन्न कर दूंगा ते तुम्हारा गोपायेत वह तुम्हारी रक्षा करे हरि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि त्वा तुमको अद्य अव यह जो ते तुम्हारा शरणम रक्षक इप्सितम वांछित। चूंकि तुम इतना अधिक अनर्गल प्रलाप कर रहे हो अतएव अब मैं तुम्हारे शरीर से तुम्हारा सिर छिन्न कर दूंगा। अब मैं देखूंगा कि तुम्हारा परम आराध्य ईश्वर तुम्हारी रक्षा किस तरह करता है। मैं उसे देखना चाहता हूँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से श्रवण करिए। असुर जन सदैव सोचते हैं कि भक्तों का ईश्वर काल्पनिक है। वे यह सोचते हैं कि ईश्वर है ही नहीं और ईश्वर के प्रति भक्ति संबंधी तथा कथित धार्मिक भावना मात्र निंद की बूटी है। यह एक तरह का व्यामोह है जैसा कि LSD तथा अफीम से उत्पन्न होता है। जब प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को कह रहे थे कि भगवान सर्वत्र उपस्थित हैं, तो हिरण्यकशिपु को उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। चूँकि एक ठेठ असुर होने के कारण हिरण्यकशिपु को विश्वास था कि कहीं ईश्वर नहीं है और कोई प्रहलाद की रक्षा नहीं कर सकेगा। अतएव वह अपने पुत्र को मारने के लिए प्रोत्साहित हुआ। उसने इस विचार को चुनौती दी कि भक्त सदैव परमेश्वर द्वारा रक्षित हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वंदे परमानंदमाधवं। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत प्रियकरो करुणावतारो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सर्वप्रथम यहाँ पे उपस्थित जितने भी वैष्णव और वैष्णवी गण है और श्री श्री राधा श्याम सुंदर गौर निताय और कृष्ण बलराम और ऑनलाइन के माध्यम से जो भी FM के माध्यम से इस कथा को अभी श्रवण करने जा रहे हैं उनके शरणारविंद में मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। और यहाँ पे अदृश्य रूप से उपस्थित सारे देवी देवताओं के चरणों में भी मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ और कृपा की याचना करता हूँ, जो मुझ पे कृपा कीजिए, जो श्रीमद्भागवतम जो मुक्त जीवात्माओं की वार्ताएं हैं उनको मैं श्रील प्रभुपाद और यह हमारे साधु गुरु शास्त्र के द्वारा जो सम्मत वाणी है उसको मैं यथा रूप में आप सब भक्तों के समक्ष प्रस्तुत कर सकूं, हमारा खुद का अपना कोई ऐसा वाणी न हो, ऐसा हमें आप आशीर्वाद दीजिए। तभी हम उसी शक्ति से इस श्रीमद् भागवतम पे आज भागवतम की सेवा कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो गत कई महीनों से श्रील प्रभुपाद जी का ये चरित्र यहाँ पे आप सब भक्तगण श्रवण करते आ रहे हैं। ये बहुत ही पावन चरित्र है जो यहाँ पे प्रहलाद महाराज जी के चरित्र के रूप में है, और ये देखने के लिए लग रहा है जो असुर बालकों को शिक्षा दिए जा रहे हैं और कई दूसरे तरह के नास्तिक लोगों की शिक्षा दिए जा रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये प्रहलाद महाराज की एक एक युक्ति हमारे जीवन में भक्ति में बढ़ने के लिए, भक्ति का संवर्धन करने के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है हमारे जीवन में। इसलिए प्रहलाद महाराज के चरित्र को स्वयं भगवान कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में यहाँ से 536 वर्ष पहले नदिया ग्राम में प्रकट हुए और इस चरित्र को बार बार श्रवण कर रहे थे, इसमें वही गुर रहस्य है। क्योंकि भगवान की भक्ति, भगवान के प्रति अगर प्रेम प्राप्त करना हो तो ये प्रहलाद महाराज के चरित्र को श्रवण करने से आराम से, सुखद रूप से, सरल विधि से हृदय में प्रकट हो जाता है भगवान के लिए प्रेम। सो अहम विकत्य मानस्य शिरः काय धरामि ते गोपायेत हरिस्त्वाद्य यस्ते शरणम ईप्सितम्। कह रहे हैं इस श्लोक में, ये हिरण्यकश्यप की उक्ति है। इससे पहले जो कई सारे श्लोक हैं उसमें प्रहलाद महाराज कई तरह के प्रवचन दिए हैं और उसके बाद हिरण्यकश्यपु उसका जो है जवाब दे रहे हैं। तो पिछले 11 नंबर, 12 नंबर और ये 13 नंबर का श्लोक है जिसमें हिरण्यकश्यपु के द्वारा बोला गया है। पहले प्रहलाद महाराज अपने गुरु जो संड अमर के किसी भी बातों को नहीं मानते थे और उससे जो है सबसे बड़ा खिन्नता का कारण था हिरण्यकश्यपु के लिए, जो हमारा बेटा है प्रहलाद और वो ये जो शिक्षा दे रहे हैं संड अमर्क जी, उसको ये ग्रहण नहीं कर रहा है। दूसरा, ग्रहण तो कर नहीं रहा है और अपने साथ साथ जितने उसके सहपाठी हैं उसको भी उन्होंने विष्णु भक्ति में बिगाड़ दिया। ये देख करके हिरण्यकश्यपु एकदम बौखला गया। देखिए, किसी व्यक्ति के अनुयायी, उसके नीचे जो भी हैं, अगर उनके पीछे से निकलता दिख रहा होगा, होता है ना व्यक्ति का, या किसी का पद प्रतिष्ठा जाना जाने लगने वाला होता है, उस व्यक्ति को बड़ा चिंता लगता है। तो ये देखा, जो मेरा बेटा, मैं असुर श्रेष्ठ हूँ, मेरा ही बेटा एक भगवान का विष्णु भक्त बन गया, तो हिरण्यकश्यपु के माइंड में ये चल रहा है, सारे के सारे असुर फिर हमारे अनुयायी हैं, ये सारे के सारे हमारे पार्टी छोड़ करके फिर उधर चले जाएंगे। तो इसमें सबसे बड़े उनको लग रहा था, जिनको किसी भी तरीके से मैं इसको दंड दूँ। कि पहले हिरण्यकश्यपु तो बहुत ज़्यादा प्रयास किया दूसरों से जो उनको मारने की, मरवाने की, लेकिन अंततः जब प्रहलाद महाराज किसी भी कारणवश नहीं मरे, उनको भगवान हमेशा रक्षा कर रहे थे, लेकिन अंत में जो हिरण्यकश्यपु उनसे वार्तालाप हो रही है उस समय में इनको बता रहे हैं, तुम इतना अनर्गल प्रलाप कर रहे हो, कई सारे बात इनको बोलने, अनर्गल प्रलाप कर रहे हो, अब मैं तुम्हारा सिर अपने हाथों से, अपने तलवार से काटूंगा और मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारा भगवान तुम्हारी कैसे रक्षा कर पाता है। ये असुर का सबसे बड़ा नेचर होता है। असुर का नेचर अगर समझें उसको साधारण भाषा में, तो असुर भगवान का विरोधी होता है, वो भगवान की सत्ता को कभी भी नहीं मानते। लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं ना, वो भगवान को सर्वत्र देखते हैं। प्रहलाद महाराज यहाँ पे बार बार हिरण्यकश्यप को देख रहे, बता रहे जो भगवान यहाँ पे सर्वत्र उपस्थित हैं, और लेकिन हिरण्यकश्यप उसको देख नहीं पा रहे। जब आगे प्रसंग आएगा, जब बोलता है हिरण्यकश्यप जो इस खंभे में भी है क्या प्रहलाद भगवान, तक उस फिर प्रहलाद महाराज जी उनको देख करके प्रणाम करते हैं। श्रीधर स्वामी महाराज वहां पर लिखते हैं खंभे को देख करके प्रहलाद महाराज प्रणाम कर रहे हैं। इस बात को भांप लिया उसने हिरण्यकश्यप ने, हो ना हो भगवान इस खंभे में भी है, मुझे भले ही नहीं दिख रहा। आपको क्यों नहीं दिख रहा है भगवान, इसके कई सारे कारण तो पीछे श्लोक में बता चुके हैं, लेकिन अभी बता रहे हैं भगवान यहाँ पे सर्वत्र उपस्थित हैं। और भगवान भगवत गीता में ये बात स्पष्ट कर चुके हैं, छठे अध्याय के 30वां श्लोक, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यो माम पश्यति सर्वत्र, कह रहे यहाँ पे भगवान जो जो मुझको सर्वत्र देखता है, पश्यति सर्वत्र देखता है, सर्वम चौमयी पश्यति और सभी में मुझको देखते हैं, तो तस्या हम न प्रणश्यामि, उसके लिए मैं अदृश्य कभी नहीं होता हूँ। उस भक्त के लिए जिसमें ये दो क्वालिटीज है, जो हर जगह भगवान को देखता है और सब में भगवान को देखता है, तो उसके लिए मैं अदृश्य नहीं हूँ, उसके लिए मैं हमेशा सामने प्रकट होता हूँ। और प्रहलाद महाराज इसी उच्चतम कोटि के वैष्णव भक्त थे, जो सभी जीवों में आत्मा रूप में भगवान को ही देख रहे थे, और इसका परिणाम ये हुआ जो भगवान उन्हें हमेशा प्रत्यक्ष दिखाई देते थे। सोच में न प्रणश्यति, यह जो है आत्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार की जो स्थिति होती है सेल्फ रियलाइजेशन सोल के लिए, ये सबसे उच्चतम स्थिति माना जाता है, जो इस श्लोक में भगवान बता रहे। क्योंकि सब जगह पे भगवान को देखना ये साधारण बात नहीं है। श्रील गुरुदेव बताते हैं हिजोलिनेस राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज, अगर आपको वृंदावन में रहना है तो यही स्वरूपगत होना पड़ेगा। इस जगत में जितने वृंदावन में सांप कीड़े मकोड़े इवन बंदर कुत्ते सुअर भी दिखाई दे रहा है, उनको भी अगर आपने दंडवत प्रणाम करते हुए नहीं झिझके और अपने आप को विनम्र रख करके रखेंगे, तो हम फिर इस धाम के वासी बन सकते हैं, धाम में रह सकते हैं। तो प्रहलाद महाराज ऐसी बुद्धि डेवलप कर रही, ऐसी दृष्टि उनके पास डेवलप्ड था, तभी वो भगवान को देख रहे थे। और ये मनुष्य, अगर मनुष्य इस स्थिति में जब पहुंच जाता है, तो उसके लिए भगवान फिर कहीं दूसरे जगह नहीं होता, भगवान हमेशा एक साथ में होते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में स्पष्ट करते हैं, जो कृष्ण की भक्त की जो स्थिति होती है ना, वो एक रूप से भगवान के साथ एक हो जाता है, एकत्वम, यहाँ पर एक रूप में भगवान के साथ जो है ना एक रूप हो जाता है, एक रूप हो जाता है। उसके लिए कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण ही सर्वे सर्वा है, और भक्त के बीच एक अंतरंगा शक्ति, भगवान और भक्त के बीच एक अंतरंगा शक्ति उत्पन्न हो जाता है, अंतरंगा मतलब संबंध स्थापित हो जाता है। ये तब होता है जब ये स्थिति उस भक्त में आ जाता है, और उस स्थिति में क्या होता है, सच में न प्रणश्यति, तो भगवान कभी भी उस भक्त के हृदय से या बाहर से कभी भी अदृश्य रूप में नहीं होते, भगवान हमेशा उनके सामने में दिखते रहते हैं। तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कोई पीछे नहीं है, ब्रह्म संहिता में इसी बात को प्रतिस्थापित करने के लिए उन्होंने एक श्लोक लिख दिया 5.38, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदय सुविलोकयंती यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। प्रेमांजन, जिसके आंखों में दृष्टि में प्रेम का अंजन लगा हुआ है, वही भक्त भगवान को देख सकता है। यानी भगवान की जो प्रेमा भक्ति के लेवल पे होते हैं, भगवान को जो इस रूप में देखते हैं, प्रेम प्रेम भगवान के साथ एक संबंध स्थापित जब कर लेते हैं भगवान, ये हमारे जो भी संबंध हम स्थापित करते हैं, 12 तरह के संबंध है, 5 मुख्य और 7 गौण। तो जो भी संबंध स्थापित करते हैं भक्त, उस संबंध में उस भक्त को भगवान दर्शन देते रहते हैं। कोई अगर बाल रूप का चिंतन कर रहा है तो बाल रूप में, कोई अगर अपना माता पिता समझ रहा है, बच्चे कृष्ण को बेटा समझ रहा है तो उनको उसी तरह के, कोई माधुर्य भाव में प्रेम में गोपियां जैसे माधुर्य भाव में तो उनको उसी तरह से श्याम सुंदर दिखाई देते हैं। तो विलोकयंती संतः सदैव हृदयेषु विलोकयंती, भगवान के जो शुद्धतम वैष्णव भक्त होते हैं भगवान को कहीं इधर उधर नहीं, हमेशा हृदय में विलोकयंती विशेष रूपेण लोकयंती बने उनका दर्शन करते रहते हैं। ऐसा नहीं है जो उनको बुलाना पड़ता है भगवान, भगवान हमेशा ऐसे संत के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। ऐसे श्याम सुंदर भगवान के जो अचिंत गुण स्वरूप हैं, मैं उनको आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ, ये ब्रह्मा जी बोलते हैं। और इसी श्लोक जो ये भगवद गीता का 6.31 है, दूसरा श्लोक बता रहे, सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्येकत्वम स्थितम स्थित सर्वथा वर्तमानोपि सयोगी मई वर्तते। करे जो योगी, जो भक्त, भगवान का भक्त सभी जीवों के हृदय में मुझे जानता है, सभी जीवों के हृदय में मैं विराजमान हूं, और इस भाव से अगर भक्ति पूर्वक प्रेम पूर्वक मेरा सेवा करता है ना, तो वह व्यक्ति मुझे सदैव अपने सामने में पाता है। ये भक्त की बड़ा उच्चतम स्थिति है, जिस भक्त ये डेवलप कर सकता है, जो भगवान को सभी जीवों के हृदय में स्थित होना, ये उच्चतम अधिकारी जो होते हैं उनके हृदय में डेवलप होता है। और जो भगवान के या भगवान के शुद्धतम वैष्णव भक्तों के आज्ञाकारी होते हैं, भक्तों का संग करते हैं और शास्त्र को अनवरत एच इट इज पालन करते हैं, ऐसे भक्त जो है इस चीज को डेवलप कर लेता है। और श्री कृष्ण की ऐसी जो दिव्य प्रेमा भक्ति में जो निरंतर योगी लगा हुआ है, एक होता है भक्त और एक होता है योगी। तो योगी जो है, योगी अगर अपने हृदय में परमात्मा स्वरूप भगवान का श्याम सुंदर का चिंतन कर रहे हैं और एक भक्त भगवान राधा श्याम सुंदर को देख रहे हैं, तो ये पूर्ण योगी, उस दोनों में किसी भी तरह का कोई अंतर नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ के तात्पर्य में लिखते हैं, वो सदैव कृष्ण में स्थित रहते हैं और कृष्ण जो है उनमें स्थित रहते हैं। भले ही वो भक्त किसी भी भौतिक अवस्था में हो, प्रहलाद महाराज कहाँ पे हैं, एक भौतिक अवस्था में है, वो भी असुर परिवार में है, लेकिन असुर परिवार में होते हुए ये चेतना उन्होंने डेवलप किया। तो कह रहे हैं जो भगवान के ऐसे भक्त होते हैं ना, उसको कहीं भी छोड़ दो, जैसे नारद जी, नारद जी नरक लोक में भी एंट्री है, नरक लोक में भी प्रचार कर देते हैं और एक एक बार में 10,000 लोगों को 5 मिनट के अंदर में भक्त बना देते हैं, सन्यासी बना देते हैं। ये क्यों, कैसे हो पाता है? क्योंकि वो उनके आत्मा पे फोर्स डालते हैं, आत्मा को फोर्स डालते हैं और ऐसा शक्ति पूर्वक वचन बोलते हैं जो वो व्यक्ति उनमें आ जाते हैं। ऐसे भक्त श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद भक्तों को देखने मात्र से और किसी जगह को देखने मात्र से उनको पूरा भूत वर्तमान भविष्य का पूरा नॉलेज हो जाता था और उस आधार पे उनको उस तरह की सेवा प्रदान कर देते थे। देखिए ये वृंदावन टेम्पल जब श्रील प्रभुपाद जी लैंड परचेज कर रहे थे इनमें बहुत ज़्यादा विवाद था। विवाद होने के बावजूद भी आज आप वृंदावन यहाँ पे देख रहे हो, लेकिन आज से 1975 से पहले जब ये लैंड परचेज हुआ था और 75 में तो ओपनिंग हुआ इस मंदिर का, तो उससे पहले इस जगह एकदम वीरान था, सुअर एकदम गधा मलमूत्र त्याग करते थे और इस जगह को कोई परचेज करेगा वो भी मंदिर बनाएगा ऐसा कोई सोच नहीं रहा था। लेकिन श्रील प्रभुपाद की ये दिव्य दृष्टि थी क्योंकि ये भगवान के शुद्धतम वैष्णव भक्त हैं तो उनको पता था जो यहाँ पे क्या चीज हो सकता है। और जब श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे अपने मंदिर के लिए जमीन लिए तो देखिए एक लाइन से कृपालु महाराज कौन कौन से महाराज खरीद खरीद करके पूरा का पूरा मंदिर ही मंदिर बन गया। तो ये एक शुद्धतम वैष्णव भक्त जब उस उच्चतम स्थिति पे पहुंचते हैं ना तो क्या कहना चाहिए उसको, दिव्य ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं तो उनको कृष्णमय जगत दिखता रहता है। और इस बात को श्रील रूप गोस्वामी भी भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं, निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। ऐसे जो भक्त होते हैं ना वो जीवन मुक्त से उच्च होते हैं, मोक्ष को भी पार करके प्रेमा भक्ति को जो पंचम पुरुषार्थ है उसको प्राप्त कर लिए रहते हैं, ऐसे दिव्य भक्त होते हैं। ये भगवान की और भगवान के भक्तों की स्थिति होती है। और श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता के 5th chapter में एक 5.26 पांचवा अध्याय का 26वें नंबर श्लोक में एक परपट लिखे हैं जो बहुत सुंदर है, दर्शन ध्यान संस्पर्शे मत्स्य कूर्म विहंगमा स्वान्यपत्यानि पुष्णन्ति तथा अहम् पद्मजा। कुछ ऐसी चीजें बता रहे हैं यहाँ पे उदाहरण, इसके फिर भक्त को कोरुलेट करेंगे जो कह रहे हैं दर्शन ध्यान संस्पर्शे, मछली जो है अपने बच्चे का लालन पालन कैसे करता है मछली अपने बच्चे को लालन पाल कर कोई दूध पिला करके या कोई पोल्ट्री फार्म से दूध लाके या कहाँ जो भी है वो सब नहीं करता है। मछली अपने बच्चे का पालन सिर्फ अपने नैनों से देखती है। मछली जब देखती है ना अपने बच्चे पे तो वो मछली का अंडा बड़ा हो जाता है और देखते देखते बड़ा हो जाता है, देख करके अपने भक्तों का यानी कि अपने बच्चे का पोषण कर लेती है। और दूसरा बोल रहे हैं कछुआ देखिए कछुआ रहता है समुद्र में नदी में जलाशय में रहता है, लेकिन कछुआ कभी भी नदी में अंडा नहीं देता, बच्चे पैदा नहीं करता, वो जब भी उनको अंडा देना होता है वो स्थल पे आता है, जमीन पे आकर के तट पे अब देता है अंडा और फिर चला जाता है वो अंदर जलाशय में, और जलाशय में जाने के बाद उस अंडे का नित्य निरंतर चिंतन करता रहता है, उस बच्चे का चिंतन करता रहता है, इससे उसका बच्चा बढ़ जाता है बड़ा हो जाता है। ऐसे ही जो है पक्षी अपने बच्चे का कैसे पालन करता है, सहला सहला के संस्पर्श करके। तो ये बोलते हैं दर्शन ध्यान संस्पर्शे मत्स्य कूर्म विहंगमा, विहंगमा पक्षी, मत्स्य मतलब मछली, कूर्म मतलब कछुआ, ऐसे अपने बच्चों की रक्षा करती है। उसी प्रकार भगवान जो है भगवान श्री कृष्ण अपने शुद्धतम वैष्णव भक्तों को जो भगवत धाम से दूर है, अभी भगवत धाम में भक्त नहीं है लेकिन दूर होते हुए भी वो अपने आप में कृष्ण भावना भावित ऐसा हो जाता है, जो कृष्ण भावना भावित डेवलप होने के बाद भगवान का चिंतन करते करते वो हमेशा धाम में ही पहुंच जाता है, हमेशा वो धाम में ही रहता है वो भक्त। जिस तरह की भक्त की स्थिति है ना, वो चिंतन के द्वारा भगवान के धाम में पहुंच जाते हैं। ये जो उच्चतम लेवल के जो भक्त होते हैं ना, चाहे वो वृंदावन में रहे या इस ब्रह्मांड के किसी भी कोने में रहे, उनका हृदय हमेशा क्या होता है, वृंदावन है, गोलोक वृंदावन धाम। जब श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका जा रहे थे तो वो बोलते, अपने डायरी में लिखते हैं, मुझे वृंदावन बहुत याद आ रहा है, वृंदावन मोर विसरत नहीं, मतलब वृंदावन बहुत याद आ रहा है। इसका मतलब है जो श्रील प्रभुपाद इतने उन्नत कोटि के वैष्णव हैं, जो एक विदेश में मलेश प्रदेश में भी जाकर के वृंदावन को याद कर रहे, उनके हृदय में वृंदावन है, वो हमेशा वृंदावन में ही रहते हैं, किसी और जगह पे कभी भी नहीं रहते। ये भक्तों की उच्चतम स्थिति होती है, जब भक्त चिंतन मात्र से भगवान को प्राप्त कर लेता है, अपने हृदय में उपस्थित कर लेता है। जो भगवान अखंड ब्रह्मांड के नायक हैं, उस ब्रह्मांड को कर्षण करके अपने हृदय में उपस्थित कर लेते हैं और उसका वो हमेशा दर्शन करते रहते हैं। ये भगवान की चिंतन की भक्ति का प्रभाव होता है। तो जिस तरह से भगवान को भक्त प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार भक्त को भी भगवान उसी तरह से रक्षा करते हैं, उसी तरह से एनी हो किसी भी हालत में अपने भक्तों को कभी भी जो है रक्षा किए बगैर नहीं रह सकते। भगवान भक्त की हमेशा रक्षा करते हैं। ये भक्त की एक बहुत बड़ी भगवान की एक क्वालिटीज है। और ये असुर इस श्लोक के अंदर में यही दिखा रहे हैं, जो भक्त की रक्षा, नौमे भक्त प्रणश्यति कौन्ती है प्रति जानी ही। 9.31 भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन आप घोषणा कर दो, हमारे भक्तों का कभी भी विनाश नहीं होता। इस बात को गलत साबित करने के लिए ये नास्तिक प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं ना, हिरण्यकश्यपु कंस जैसे व्यक्ति, इसी को चैलेंज दे रहे हैं ना, बोल रहे ना यहाँ पे, उसने इस विचार को चुनौती दी कि भक्त सदैव परमेश्वर द्वारा रक्षित हैं। इस बात को नौमे भक्त प्रणश्यति कौन्तेय प्रति जानी, ये बात को चुनौती देने के लिए ही प्रहलाद महाराज को मारने के लिए उद्यत हुए, जो तुमको कौन बचाता है मैं देखता हूँ, जिसको विष्णु विष्णु जिसको तुम याद करते हो, आज मैं देखना चाहता हूँ तुमको कौन बचाता है। भगवान की स्थिति को चैलेंज देते हैं। तो ये असुर का स्वरूप होता है। असुर का स्वरूप आप सब भक्तगण भगवत गीता के 16वें अध्याय में बहुत ही आराम से आप लोग जानते हैं, बहुत सारे वर्णन है, कई सारे श्लोक में करीब 6-7 श्लोक तो होगा, 6-7 श्लोक में पूरा भगवान असुर की क्वालिटीज बता रहे हैं, जो क्या क्या क्वालिटीज होता है असुर के अंदर में। तो मैं उसमें से एक श्लोक बताता हूं, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता माम आत्म पर देहेशु प्रद विसंता अभ्यसूयका। 16.18 नंबर यह श्लोक है भगवत गीता का। कह रहे हैं ये जो मिथ्या अहंकार, ये जो असुर होते हैं ना, मिथ्या अहंकार से भरे होते हैं, बल से घमंड बने होते हैं, दर्प घमंड रहता है, काम तथा क्रोध से एकदम मोहित होते हैं। और आसुरी व्यक्ति जो होता है ना, उसकी सबसे बड़ी जो क्वालिफिकेशन होता है ना, वो अपने शरीर में, भगवान सभी के हृदय में परमात्मा रूप से विराजमान है ये सबको पता है, लेकिन इस बात को वो असुर नकारता है। जो भगवान को जो सबके हृदय में है, तो उसको ये इतने घमंडी हो जाते हैं, जो सभी के हृदय में भगवान उपस्थित हैं और मेरे हृदय में भी उपस्थित है और दूसरों के हृदय में भी शरीर में स्थित है, ऐसे भगवान से वो ईर्ष्या द्वेष करता है। और जो वास्तविक धर्म है ना, जो भगवान के द्वारा स्थापित धर्म है, उनका वो हमेशा का हमेशा निंदा करता रहता है, कोई भी बात ऐसा नहीं करेगा, कोई भी ऐसा करतूत नहीं होता एक असुर प्रवृत्ति के लोगों का जो वो भगवान के फेवर में हो। तो हमेशा धर्म की निंदा करता है। और दूसरा जो सबसे बड़ा क्वालिटी होता है वो शास्त्र का उल्लंघन करता है, क्योंकि शास्त्र जो है ना वो डायरेक्ट भगवान है। इस जगत में अगर भगवान को अगर देखना है ना तो दो रूपों में हम प्रत्यक्ष रूप से भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं। वो है हमारे श्रील गुरुदेव जो यहाँ पे आचार्य गण हैं, वो हमारे डायरेक्ट भगवान के स्वरूप हैं। उनके साथ हम आत्मसात करके ऐसा भाव रखेंगे तो हम डायरेक्ट भगवान के साथ रहेंगे। और दूसरा है भगवान के द्वारा दिया हुआ ये दिव्य ग्रंथ। ये दिव्य ग्रंथ जो है ये हमारे चक्षु हैं, आंख हैं। कह रहे हैं कलयुगी जीवात्मा वही ठीक तरीके से इस कलयुग के नेचर को देख सकता है जिसके पास ये शास्त्रीय चक्षु है, दिव्य चक्षु है। ये चमड़े की आंख से न तो भगवान को देख सकते न इस भौतिक जगत को देख सकते हैं। देखने के लिए केवल और केवल शास्त्र चक्षु होना चाहिए। और शास्त्र पे जो विश्वास नहीं करता उसी का नाम है नास्तिक, उसी का नाम है असुर। तो असुर और सुर में यही डिफरेंट है। जो सुर जो है वो क्या करता है, भगवान की सत्ता को मानता है और भगवान के शास्त्रों में विश्वास करता है, लेकिन असुर इसके विरोध में होता है। और असुर प्रवृत्ति के जो लोग है ना वो देवता के तो उपासक बन जाते, ब्रह्मा जी की उपासना करेगा, शिव की उपासना करेगा, कई देवी देवता की उपासना करेंगे, लेकिन पक्का विरोधी होता है वो विष्णु का। विष्णु विरोधी जो व्यक्ति है ना उसको समझ लो ये असुर है, चाहे आपके घर में हो या मेरे घर में हो। या मेरा कभी मन ऐसा विचार आता है जो ये विष्णु भगवान नहीं है तो मैं खुद ही एक राक्षस हूं। ये राक्षस प्रवृत्ति की बुद्धि है जिसके मन में ये भाव आता है जो शास्त्र झूठा है, किंवदंती है, भगवान है ही नहीं कहीं। यहाँ पे हिरण्यकश्यपु पूरा का पूरा दिखा रहे हैं जो एक आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति का क्या नेचर होता है। तो ईर्ष्या करता है और भगवान की शक्ति को जो है कभी नहीं मानता। देखिए भगवान सभी जीवों के हृदय में विराजमान है और भगवान ने एक जीव को स्वतंत्रता की इच्छा दी हुई है, स्वतंत्र रहने की इच्छा दी हुई है, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं ना उस स्वतंत्रता का सदुपयोग करते हैं। और भगवत भक्ति भगवान को प्राप्त करने के लिए वो हमेशा नित्य निरंतर लगे रहते हैं। लेकिन जो आसुरिक प्रवृत्ति के व्यक्ति है ना, यहाँ के जो तथाकथित दार्शनिक वैज्ञानिक जो भगवान की सत्ता को आत्मा को मानने के लिए राजी नहीं है, वो व्यक्ति भगवान के इस बात को चैलेंज करता है जो ये चीज नहीं है। एक दूसरा चीज यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी परपट में लिखे हैं, बहुत अच्छा चीज लगा, मैं तो इस बात को नहीं जानता था। भगवान जो सभी के हृदय में विराजमान है ना, तो हम मैं समझता था खास करके ये परमात्मा रूप में विराजमान है, लेकिन कह रहे हैं परमात्मा रूप में वो उनका एक दूसरा नाम काल स्वरूप है। भगवान वो जो परमात्मा रूप में है वही काल है, वही काल है। यहाँ पे परपट में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं जो असुर जो है इस बात को नहीं समझ पाता जो भगवान काल के रूप में सारे चीजों को देख रहे हैं, चाहे हम बंद कमरे में चाहे चहार दीवारी में कितना पैक कर लें और उसके अंदर में कोई भी हम गलत काम करें या अच्छा काम करें, हम किसी से बच नहीं सकते। हमको लग रहा हो थोड़े देर के लिए हम बच जाएंगे, लेकिन हम बच नहीं सकते क्योंकि भगवान काल के रूप में उसी जगह पे स्थित है। जो व्यक्ति जहां कर रहा है उन्हीं के हृदय में काल देख रहे हैं और यही काल जो है ना जो यथावत समय है, शाश्वत समय है काल, वही काल हमारे किए गए कर्म का हिसाब किताब रखते हैं। तभी तो उनको पता चलता है पूरे जीवनी का जो हमने क्या किया कब क्या किया, ये भगवान काल रूप में उपस्थित होते हैं और वही सब चीजों को जानते हैं। तो काल रूप में जो व्यक्ति भगवान को देख पाते हैं वो व्यक्ति जो है भगवान की प्रेमा भक्ति को प्राप्त करते हैं और वो आत्म स्वरूप में रहते हैं। ऐसे कई भक्त हैं जिसका चर्चा भागवतम में हुई है, तो मैं एक दो भक्तों की चर्चा कर रहा हूं। उसमें कुंती महारानी की स्तुति में एक श्लोक बताती है कुंती महारानी 1.8.28 नंबर, मन्ने त्वाम कालमीशानाम अनादि निधनम विभुम समम चरंतम सर्वत्र भूतानाम यन्मिथ कली। कुंती महारानी एक देखने के लिए एक स्त्री है ना, स्त्री को कई बोलते हैं उनके पास दिमाग कम होता है, वो इस चीज को समझने के लायक नहीं होते, जैसे इस सब चीजें। लेकिन देखिए यहाँ पे कुंती महारानी की स्थिति कितनी दिव्य है, हम अंदाजा नहीं लगा सकते जो कुंती महारानी की स्थिति एक घर गृहस्थी में रहते हुए और भगवान के लिए इतना ज्यादा रिलेशनशिप डेवलप कर लेना और उच्च स्थिति में पहुंच जाना, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं करता कर सकता। कुंती महारानी क्या स्थिति देख रहे, मन्ये त्वाम कालम ईशानाम, भगवान श्री कृष्ण जब हस्तिनापुर को छोड़ करके द्वारका के लिए जा रहे थे, जाने वाले थे, उसी समय में जो है कुंती महारानी उनको प्रार्थना करते हैं। तो कई श्लोकों में प्रार्थना है, उनको आप पढ़ सकते हैं बहुत। ये प्रार्थना भागवतम में सबसे इम्पोर्टेंट है और श्रील प्रभुपाद जी इसके नाम से एक बुक भी लिखे हैं, कुंती महारानी की प्रार्थनाएं स्तुति स्तुति। तो मन्ये त्वाम कालम ईशर, कह रहे भगवान को कृष्ण को बोले मैं आपको काल के रूप में शाश्वत काल परमेश्वर आदि अंत रहित अनादि निधनम विभूम, विभूम मतलब होता है सर्वव्यापी, जो आपको मैं सर्वव्यापी समझ रहा हूं और अनादि निधनम जिसका ना आदि है ना अंत है, और ऐसे परमेश्वर जो शाश्वत रूप से हमेशा विराजमान रहते हैं और वो क्या कहते हैं समम चरंतन सर्वत्र, माने ऐसे भगवान क्या करते हैं काम, सभी पे कृपालु रहते हैं, सभी पे एक दृष्टि डालते हैं, भगवान कभी भी दो दृष्टि नहीं डालते। लेकिन कई बार दिखने में लगेगा अभी थोड़ी देर के बाद जो भगवान जो है पक्षपात करते हैं, समम चरंतु चरंतम सर्वत्र भूतानाम यन्मिथ कली। लेकिन मत फिर भी समाज में ये मतभेद का क्या कारण होता है, तो ये सामाजिक में पारस्परिक जो कलह है ना, जो मतभेद का एक मेन कारण होता है, यन्मिथ कली कली इस पारस्परिक, क्योंकि भगवान तो सब पे कृपालु हैं, वो सबको बराबर देखते हैं और ऐसे ही देखने की शिक्षा देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो विराजमान जो कलयुगी जीवात्मा है उनके हृदय में वो विराजमान होकर के पारस्परिक कलह करते हैं। अब कह रहे हैं भगवान परमात्मा स्वरूप सभी के हृदय में विराजमान है, जिसका ये उस भक्त जो भक्त ऐसे उन्नत कोटि के जो वैष्णव हैं उसका उपयोग अगर करे भगवान को प्राप्त करने के रूप में, तो भगवान को हमेशा हर जगह वो देख सकते हैं। जैसे आप भागवतम के भीष्म पितामह के प्रसंग में हम लोग पढ़ते हैं, इस बात को जानते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण, देखिए भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण के अनन्यतम वैष्णव भक्तों में से एक हैं। जब भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था प्राप्त, और इच्छा मृत्यु का वरदान है जब देखे भगवान जो अब 465 साल करीब करीब भीष्म पितामह थे और 58 दिन सरसैया पे लेटे हुए थे, और उसके बाद जब उत्तरायण हुआ सूर्य तो अपना शरीर छोड़ने के लिए वो तत्पर हुए और भगवान देखिए सामने में प्रकट हो गए। भगवान जो है ना अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए ना वो किसी न किसी तरीके से आएंगे। देखिए भगवान का कोई रिलेटिव नहीं है ये भीष्म पितामह, लेकिन अपने भक्तों के लिए, भक्त वत्सलता के लिए भगवान वहां पर मैं सामने में आ गए। लेकिन अर्जुन उनका रिलेटिव है, ममेरा भाई है, ममेरा फुफेरा भाई का रिलेशन है ना, लेकिन अर्जुन के साथ उसका अपना आत्मीयता का संबंध है, एक संबंध के लिए संबंध से, और भक्त भी है, लेकिन भीष्म पितामह के साथ नहीं है। लेकिन जब महाभारत का युद्ध हुआ तो दुर्योधन एक तरफ है और युधिष्ठिर महाराज एक तरफ है, अपने भक्तों की रक्षा कैसे करते हैं भगवान, देखिए दुर्योधन को माने उनके सभा में गए और दूत बन करके गए युधिष्ठिर महाराज के, शांति दूत बन करके, और उनको समझा रहे हैं। भगवान अगर किसी को समझाए क्या वो व्यक्ति नहीं समझेगा क्या? अरे भगवान किसी को प्रवचन देगा तो क्या वो व्यक्ति समझ नहीं पाएगा क्या? वो निश्चित रूप से समझ पाएगा, लेकिन भगवान चाहते नहीं थे। अंदर में दुर्योधन के हृदय में जो काल स्वरूप भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान है, वो दुर्योधन को समझने नहीं दे रहा था जो शांति नाम का भी कोई चीज होता है। तभी तो उसने बोला मैं सुई के नोक के बराबर भी बिना युद्ध किए हुए जमीन नहीं दे सकता। जो जमीन के लिए सुई का नोक जमीन देने के लिए राजी नहीं हुआ, वो युधिष्ठिर महाराज को पूरे इस ब्रह्मांड का, पूरे भारत वर्ष का जो है ना सम्राट बना। जिस समय में वो राज बने थे तो वो अफगानिस्तान, बलूचिस्तान सब भारत वर्ष के एरिया में था। अभी ऐसा नहीं है जो बर्मा वगैरह, बर्मा तक उधर कने सारे बड़े थे ये हिंदुस्तान। तो ऐसे जगत का जो युधिष्ठिर महाराज, तो देखिए दुर्योधन के हृदय में उपस्थित होकर के उनको समझने नहीं दे रहे। नास्तिक बुद्धि में है तो उसी की बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन युधिष्ठिर महाराज की रक्षा करने के लिए, युधिष्ठिर महाराज की ग्लोरिफिकेशन करने के लिए उनको महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण उपस्थित होकर के, केवल उपस्थित हुए और सामने वाली सेना का आयु हर लिए। अर्जुन या पांडव कोई थोड़े इनको मारने वाले थे, भगवान ने सभी की आयु हरते हैं। भगवान जो है ना हम सब की, सब की जिनकी वो आयु हरना होता है, भगवान देखने मात्र से आयु हर देते। वो महाभारत के युद्ध में भी ऐसा ही घटना है, सबकी जो है आयु को हर लिए और आसानी से है युधिष्ठिर महाराज इस युद्ध को जीत लिए और युधिष्ठिर महाराज की ग्लोरिफिकेशन हुई और पूरा एक छत्र राज्य की। तो देखिए ये दो तरह का पलड़ा है ना, जो एक तरफ हिरण्यकश्यपु एक तरफ प्रहलाद। हिरण्यकश्यपु को समझा रहे हैं भाई भगवान सर्वत्र है, भगवान की सत्ता का मान लो, क्योंकि वही एक ही क्या बोलते हैं ट्रांसफार्मर है जहां से पावर का सप्लाई होता है, जो आप में भी है मुझ में भी है। पावर का सप्लाई कोई दो जगह से नहीं है। तो क्या बोलता है हिरण्यकश्यपु भाई, पावर का सप्लाई तुम्हें देगा विष्णु, विष्णु मुझे देगा क्या? विष्णु तो मेरा कट्टर दुश्मन है, विष्णु तुम्हारा दोस्त हो सकता है तुम्हें देगा, लेकिन ये पावर का सप्लाई तो एक ही जगह से होता है ना। इसी तरह देखिए कालनेमी और मुचुकुंद की कथा आप लोग श्रवण की है, मैं उस डीपली नहीं बताऊंगा, एक लाइन में बताना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण काल यवन को मार रहा था तो दौड़ा दौड़ा के इतना दौड़ाया, दौड़ाते दौड़ाते उनको उस मुचुकुंद के गुफा में ले गया और मुचुकुंद के गुफा में ले जाकर के और उसी मुचुकुंद को काल के स्वरूप में उपस्थित होकर के, जैसे ही उन्होंने कालयवन ने लात मारा और जैसे उनका दृष्टि गोचर हुआ और कालयवन की पूरा का पूरा शरीर भस्मीभूत हो गया। लेकिन भगवान स्वयं वासुदेव वहां पे उपस्थित होकर के, देखिए मुचुकुंद को भक्ति की रक्षा और उनकी जो पूर्व की भक्ति थी और उसी मुचुकुंद को भगवत धाम लेके जा रहे हैं। तो भगवान अपने भक्त की रक्षा किस तरीके से कर लेंगे ना, ये भगवान ही जानते हैं, ये भगवान की अचिंत शक्ति है, हम इसको नहीं समझ सकते हैं। प्रहलाद महाराज की रक्षा भगवान हमेशा करते आए हैं और करते रहेंगे, और प्रहलाद महाराज के साथ तो हमेशा भगवान रहते हैं। आप समुद्र मंथन की कथा में देखिए ना, कितनी सुंदर बात यहाँ पे है। जो भगवान मोहिनी एक धनवंतरी के रूप में भगवान आए अमृत लेकर के, और उसको जैसे ही लेकर के प्रकट हुए असुर लोग उस अमृत को छीन के भाग गया, अहम पूर्वम। अब कोई पी नहीं रहा है, असुर में यही होता है मैं पीऊंगा, लेकिन एक दूसरे को छीन रहा है, किसी को नहीं दे रहा है। लेकिन देवता की प्रवृत्ति ऐसी नहीं होती है, तुरंत भगवान जो है विष्णु स्वरूप मोहिनी रूप लिए और उन्होंने बीच में समझौता करने का ऐसा दिए और देवताओं को जो है अमृत पिला दिए और उनके दृश्य उनको सबको सब दूसरा चीज पिला दिए, दूसरा पेय पदार्थ पिला दिए ये असुर को। ये देखिए मोहिनी स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, ये भगवान की अचिंत शक्ति है, भक्त वत्सलता है, जिसके कारण ये भगवान ऐसा कर पा रहे हैं। तो ऐसे भागवतम में बहुत दृष्टांत है। तो भगवान यहाँ पे श्री कृष्ण जो है प्रहलाद महाराज की रक्षा कर रहे हैं, हमेशा करते रहेंगे। तो हम सबको ये प्रसंग को पढ़ के एक बहुत बड़ा बल मिलता है, बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, शक्ति का संचार होता है अगर कोई भगवान की बढ़िया से भक्ति करेगा, शुद्धतम भक्ति करेगा, नित्य निरंतर भगवान का जाप करेगा। और शास्त्र में क्या बोलते हैं, अकाट जो है अटूट श्रद्धा रखेगा, ऐसे व्यक्ति के सामने में भगवान हमेशा उपस्थित रहेंगे और हम सब एक दिन जरूर भगवत धाम के अधिकारी हो जाएंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। श्रील प्रभुपाद की जय।